केवल अनन्य भक्ति द्वारा पाया जा सकता है, तो ये अनन्य भक्ति है क्या और इसे हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं?
अनन्य भक्ति का मतलब है सारे ही भावों से श्री कृष्ण की श्री चरणों में अर्पण हो जाना। कैसे कैसे क्या क्या थे? दास, शांत, सखा, वत्सल्य और माधुर्य, एक वो। फिर श्रवणम, कीर्तनम, दास्यम, अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम और आत्मनिवेदन के भाव से। तो ये सारे भाव यदि एक श्री कृष्ण में है और कृष्ण के अतिरिक्त किसी में इस प्रकार का कोई भाव नहीं है और हम फिर इसी भाव के द्वारा मंगल आरती करते हैं, इसी भाव के द्वारा भजन करते हैं, इसी भाव के द्वारा भगवान का श्रृंगार करते हैं, इसी भाव के द्वारा भगवान का भजन करते हैं, तो ये अनन्य भक्ति, दूसरे शब्दों में प्रेमा भक्ति है। अब ये प्रेमा भक्ति मिलती कहां से, कैसे पा सकते हैं? तो ये सतगुरु के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? सतगुरु के द्वारा। वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कैसे पायो? सतगुरु अमोलक वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरी माताओं, बहनों, बच्चों, बच्चे भी हैं इसलिए कह रहा हूं, और बच्चे हैं इसीलिए बचे हुए हैं। जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन की जो फाउंडेशन है ना, वो हमारे सद्गुरु है, जिसके ऊपर हमारी भक्ति की बिल्डिंग खड़ी है। जैसे जब मंदराचल पर्वत को क्या बनाया था? मथनी बनाया था। वासुकी नाग को क्या बनाया था? रस्सी बनाया था। और क्षीर सागर का क्या हो रहा था? मंथन हो रहा था। लेकिन मुसीबत क्या थी कि वो मंथनी जो थी वो जमीन में पाताल में धस रही थी, और जब मंथनी धस जाए तो मंथन नहीं हो सकता। इसलिए उस मंथनी को उठाने के लिए भगवान ने कौन सा रूप लिया? कश्यप रूप लिया और अपनी पीठ पर उसे धारण किया। ऐसे ही हमारे जीवन के ये जो भवसागर है, भवसागर की मंथनी का जो मंथन है वो कब होगा, जब उसकी नींव में कौन होंगे, सदगुरु होंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की आरंभ ही सदगुरु से होता है और उस जीवन का अंत भी सदगुरु पे होता है। इसलिए स्पष्ट शास्त्र लिखते हैं यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, आगे क्या है, यस्या प्रसादात न गतो कतेपि। अब ये शिष्य पे है कि वो अपने गुरु को कैसे लेता है। संत कबीर क्या कहते, गुरु को मनुष्य जो गिने, चरणामत को पान, वो नर नर के जाएंगे जन्म जन्म स्वान। पहली बात तो ये है कि हम अपने गुरुदेव को एक साधारण व्यक्ति के रूप में कभी नहीं ले सकते। जिसने अपने गुरु को साधारण रूप में लिया और कहते हैं चरणामत को पान, जो उनके चरण को अभिषेक होता है उसको एक साधारण सा पानी समझ लिया। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई नेक्स्ट टू कृष्ण है तो वो कौन है, हमारे गुरुदेव है। और वहीं से हमें प्रेमा भक्ति मिलती है, वहीं से हमें नोदा भक्ति मिलती है, और इन सबों के मिश्रण को क्या कहेंगे जी, अनन्य भक्ति, जो हमें कृष्ण तक पहुंचा देती है। इसलिए गुरु महाराज की कृपा ही कृष्ण की कृपा है और गुरु महाराज की प्रसन्नता ही कृष्ण की प्रसन्नता है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा आत्मकतो। इसलिए भागवत के उद्धव को कौन से स्कंद में समझाते हैं जी, ग्यारहवें स्कंद में समझाते हैं। ग्यारहवें स्कंद में उद्धव को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे उद्धव, अपने गुरु को वैसा ही लो जैसे मुझे लेते हो, अपने गुरु को वैसे ही लो जैसे मुझे लेते हो। और आगे जाके कहते कि एक तरफ सारे देवता हो और एक तरफ सतगुरु हो तो वो इक्वल हो जाता है। इसलिए शिष्य के लिए गुरु जो है वो शिष्य की भक्ति के प्राण है, लेकिन गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो प्रामाणिक हो, जिसका अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण, प्रभुपाद जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण स्वामी भगवान है और गुरु दास भगवान है। हे तो भगवान ही का रूप, लेकिन किस रूप में, दास रूप में। तो गुरु का काम है कि खुद भी कृष्ण की सेवा में लगे और अपने शिष्यों को भी सेवा में लगाए, खुद भी भजन करे और अपने शिष्यों को भी भजन करवाए, खुद भी भक्ति करे और अपने शिष्यों को भी भक्ति करवाए। इसलिए कहा पूरे गुरु का सुन उपदेश, जो पूरा गुरु है वो करता क्या। इस संसार में तीन तरह के लोग बताए गए हैं, कितने, तीन तरह। उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी महाराज ऐसे देते थे, एक व्यक्ति है जिसने रास्ते में सोना पड़ा देख लिया, ओ सोना है लेकिन मुझे क्या लेना देना, जिसका होगा वो खुद ही ले जाएगा, मैं ये झंझट क्यों पालू। इसलिए आगे निकल जाता है, सोने को छूता भी नहीं है। एक व्यक्ति आता है बोलता सोना, वाओ, उठाता है, ग्रहण स्वीकार करता है लेकिन अपने ही पास रख लेता है, अपने इंजॉय के लिए, किसका ये सोना का हार बनाऊंगा, चेन बनाऊंगा, अंगूठी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, अपने इंजॉय के लिए रख लेता है। लेकिन एक व्यक्ति आता है जो सोने को उठाता तो है लेकिन उसको ढूंढ के मालिक तक पहुंचा देता है। ऐसे तीन तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे संत होते हैं जो उदासीन होते हैं, जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपनी भजन में कुटिया में बैठे अपना भजन किया और ना लोगों से मिलना, ना लोगों से कोई वास्ता रखना, अपनी मस्ती में मस्त रहे, एक वो संत होते हैं। एक दूसरे संत होते हैं जो लोगों को स्वीकार करते हैं लेकिन अपने सुख के लिए, अपने ही इर्द गिर्द नचाते हैं, मैं ही तुम्हारा कौन हूं, भगवान हूं, और मेरे सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है, मैं ही सतयुग में था, कलयुग में था, इधर था, उधर था, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, ऐसे करके अपने शिष्यों को अपनी ही पूजा पाठ में लगा देते हैं और अपने ही इर्द गिर्द नचाते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के शिष्यों के जीवन में उस व्यक्ति के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों की ना साधना हो पाती है, ना स्मरण हो पाता है, ना शास्त्रों का अध्ययन होता है, ना ही उनके जीवन में धार्मिकता होती है, ना ही उनके जीवन में आध्यात्मिकता होती है, क्योंकि वो तो मात्र उस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, ये सोचकर कि यही हमें छुड़वाएंगे, यही हमारा सुखी करेंगे और यही हमारा बेड़ा पार करेंगे। यही हमारा सहारा है, यही हमारा आसरा है, यही हमारा ईश्वर है, यही हमारा भगवान है, इसी की हमें पूजा करनी है, इसके सिवा कोई भगवान नहीं है। लेकिन एक तीसरी व्यक्ति होती है जो शिष्यों को ग्रहण करते हैं और उसके मालिक तक पहुंचा देते हैं, जिसका नाम है कृष्ण। वो शिष्यों को कभी अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। इसीलिए हमने एक सही आचार्य के रूप में शिला भक्तिपाद जी, शिला प्रभुपाद जी महाराज को देखा। हम दूसरी जगह जाते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उस मंदिर का संत होता है उसकी मूर्ति बिल्कुल मंदिर के जी बीच में होती है और भगवान कहीं कोने में होता है। शायद आपने देखा, कितने लोगों ने देखा, वाओ। उसकी मूर्ति मंदिर के बीच बीच में रखते हैं, यानी जिसे कहते हैं मेन कैरेक्टर, और भगवान साइड हीरो है, एक कोने में बैठा है। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज ने क्या सिखाया कि गुरु का स्थान भगवान के सम्मुख है, भगवान के बराबर नहीं है। इसलिए आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, आपको सदगुरु कैसे देखेंगे, भगवान के दर्शन करते हुए सामने। आप यहां पर भी देख सकते हैं, राधा वृंदावन चंद्र के कहीं बराबर नहीं है। क्या क्या है, गौर निताई है, श्याम सुंदर राधा वृंदावन चंद्र है और जगन्नाथ जी, वहां कहीं आपको गुरु का सिंहासन नहीं है। वो क्योंकि गुरु क्या है, भगवान का दास है, भगवान का निज सेवक है, और उनका क्या काम है, उनका काम क्या है, खुद भी सेवा में लगना और शिष्यों को भी सेवा में लगाना। तब कहा क्या, पूरे गुरु का, एक सही गुरु का उपदेश क्या होगा, एक सही गुरु उपदेश क्या देता है, पार ब्रह्म निकट कर पेक। उसका साधन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका रास्ता क्या है, स्वा स्वा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे। शास्त्रों ने तो स्पष्ट कर दिया है। इसलिए प्रेम के दाता, भक्ति के दाता और साधना के दाता कौन है? सतगुरु है। अगर हमें प्रेमा भक्ति चाहिए, इसीलिए क्या कहा, हे अर्जुन तद्विधि प्रणापातेन प्रप्रश्नेन सेव्या। तुम्हें अगर ये समझना है तो कहां जाओ? किसी गुरु के पास जाओ। और गुरु के पास जाकर, गुरु कैसा? तत्वदर्शी गुरु, जिसने इस सत्य को जान लिया। क्या सत्य है? कृष्ण परमेश्वर, बस ये सिंपल सत्य है। और सत्य कभी जटिल नहीं होता, झूठ जटिल होता। सत्य तो बहुत सिंपल है। यह सूरज है 12 बजे, इसको समझाने के लिए किसी जटिलता की, यह सूरज है, लेकिन यह सूरज नहीं है, उसके लिए 10 पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसे ही कृष्ण भगवान है, सिंपल है, कृष्ण भगवान है, बस सिंपल। और हमें उनका भजन करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्यों? हम उनके दास हैं, हम उनके अंश हैं। जीवेदा स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ममी वंश जीवलोके। तो ये सिंपल और सादा है। और आज कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये जो अनन्य भक्ति है सिंपल हो गई है। मात्र आप कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और देखो कितना आसान है। चैंटिंग, डांसिंग ऑन फिस्टिंग, कितना आसान प्रभुपाद जी महाराज ने कर दिया। खूब भजन करो, और उस भजन में क्या करो, नृत्य करो, आसान है। आसान भी है, सुखद भी है, आनंददायक भी है। चैंटिंग, डांसिंग ऑन फिस्टिंग, जो भी खाना है भगवान को भोग लगा के खाया जाए। तो कितना सरल है ये सब भक्ति करना। लेकिन आज कलयुग में कुछ लोगों ने धर्म को बहुत जटिल कर दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटिव कर दिया है, जबकि धर्म तो सुखद आनंदित रस देने वाला है, प्रेम से पूर्ण है। और ये सब कहां मिलता है? जब कोई पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, जब किसी पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी तभी ऐसा होगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इर्द गिर्द ही नचाते रहते हैं, अपने इर्द गिर्द ही नचाते रहते हैं। इसलिए ये भक्ति कहां मिलेगी? सदगुरु से मिलेगी। और कैसी होगी, इसका रूपरेखा आपको समझा दिया। इसलिए हमारी आध्यात्मिक जीवन की नींव कौन है जी? हमारे सतगुरु है। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा बापूजी। बापूजी, भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 12, उसमें कृष्णा अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा समझाएं।
भगवद गीता
अध्याय 12 श्लोक नंबर 12,
यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फल का परित्याग है, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य के मन को शांति मिलती है। उससे पहले 11वें अध्याय 11वें श्लोक में किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करके कर्म करो। पहली तो बात, यहाँ अभ्यास किस चीज का है? कर्म फल के त्याग का। कर्म फल के त्याग का अर्थात आप जो भी कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा नहीं रखिए। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, ये मैंने जो भी कर्म किया वो कृष्ण के अर्पण है। अब कृष्ण के अर्पण करने का मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक बात समझाऊं। कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का नहीं, और ना ही तुम अपने कर्म, तुम्हें अपने कर्म का अधिकार है उसके, और ना ही तुम अपने कर्म का कारण। एक बात आपको समझाऊं, हमें अपना कर्म करना है, मतलब आपको सबों को अपना कर्तव्य का पालन करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। फिर कर्तव्य के पालन करने के बाद जो रिजल्ट आए उसे स्वीकार कर लेना है। उस रिजल्ट को स्वीकार करने का मतलब है उसको त्यागा है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? जैसे एक रिजल्ट वो है जैसे हम चाहते हैं, वो हमको चाहिए, तो हमने उसका त्याग नहीं किया। लेकिन हमने त्याग किया, अब जो भी मिल जाए उसे हमें स्वीकार करना है। क्योंकि शांति कब मिलेगी? एक होता त्याग और एक होता वैराग। कई लोग त्याग तो कर देते हैं लेकिन वैराग्य नहीं होता है। तो किसी चीज को छोड़ दिया लेकिन छोड़ी हुई चीज की याद नहीं जाती है, छोड़ी हुई चीज की याद नहीं की जाती, क्योंकि छोड़ा तो है लेकिन वैराग्य के साथ नहीं छोड़ा। त्याग किया है लेकिन, जैसे कुछ लोग दारू छोड़ तो देते हैं लेकिन वो दारू की याद आती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने छोड़ा होता है इसलिए उसको पीते नहीं है लेकिन भूलते भी नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति मिला मुझे, बोला बापू मैंने नॉनवेज छोड़ तो दिया लेकिन सपने में खाता हूं। सच्ची बात बता रहा, सपना आता है सपने में खाता हूं, क्योंकि त्याग तो क्या है लेकिन वैराग्य नहीं। और एक होता है त्याग वैराग्य से, जिसका कभी फिर नाम भी नहीं लेता इंसान, जिसकी उसको कभी सोच भी नहीं आती। ना ही उसको उस त्याग का अहंकार है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, उसका अहंकार भी नहीं है। एक दिन भगवान शिव और मां पार्वती आकाश मार्ग पे भ्रमण कर रहे थे, तब एक राजा को देखा, तब मां पार्वती ने कहा कि बोले बाबा, हे प्रभु, ये राजा ने बड़ा त्याग किया है। बोला क्या त्याग किया? कोई त्याग नहीं किया है। बोला फिर चलो देखते हैं इसका तमाशा। दोनों ने ब्राह्मण साधु का वेश लिया और राजा के पास गया। राजा उस समय खिचड़ी खा रहा था। मां पार्वती जो साधु के रूप में थी, कहा मुझे ये खिचड़ी दे दो। भगवान शिव ने उसको उत्तेजना दिलाने के लिए कहा कि हाँ, ये क्या खिचड़ी देगा, कुछ नहीं देने वाला। फिर मां पार्वती ने कहा खिचड़ी दे दो। भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं देगा, ये छोड़ दो। उस राजा ने बोला मैं खिचड़ी नहीं दे सकता हूं, मैंने राजपाट छोड़ दिया, खिचड़ी क्या है। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को कर देखा, इसने जो राजपाट छोड़ा है लेकिन इसके अभिमान नहीं छोड़ा। जो त्याग वो होता है जो कभी जिंदगी में फिर याद भी ना आए, क्योंकि उसका क्या हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने एक बार मांस छोड़ दिया है, अब उसका विचार भी नहीं आता है, और कभी विचार भी आता है तो घृणात्मक होता है, ऐसा था ऐसे नहीं आता, वाओ चिकन खा रहे हो लेकिन हम नहीं खा सकते हैं ना, ऐसा भाव कभी नहीं आता। हाँ भाई तुम लोग तो खा लो लेकिन हम तो छोड़ चुके हैं, ऐसा भाव नहीं आता है कभी। मजे ले लो ले लो, हमने तो छोड़ दिया, ऐसे मजबूरी वाला भाव नहीं आता कि हम क्या करें, हम छोड़ दिए, हम खा नहीं सकते, लेकिन दिल तो हमारा नॉनवेज की खुशबू आ रही है, लेकिन हमने तो दीक्षा ले ली, हम नहीं छोड़, हम नहीं खा सकते, कहीं उसमें राग, तो ये त्याग नहीं, और उससे मन अशांत रहता है, खा नहीं खाते नहीं लेकिन खाने को मन करता है तो ये अशांति, पीते नहीं लेकिन पीने को मन करता है, खेलते नहीं है लेकिन खेलने को मन करता है, कुछ और विषय त्याग दिए लेकिन उसका मन करता है, तो ये जो मन करता है वो त्यागा है लेकिन वैराग्य नहीं, और ऐसा त्याग खतरनाक है, ऐसा त्याग खतरनाक है, इसलिए ऐसे कई लोग होते हैं छोड़ते हैं फिर खा लेते हैं, छोड़ते हैं फिर पी लेते हैं, छोड़ते हैं फिर कर लेते हैं, क्यों कि उनके त्याग में जी वैराग्य नहीं, तो त्यागने के साथ वैराग्य आएगा तब मन को क्या आएगी शांति, कैसे कि अच्छा हुआ हमने ये मुसीबत से जान छुड़ा दी, वैराग्य है, अब विचार भी हमको कभी उसका नहीं आता, तो क्या होती शांति होती। तो कृष्ण कहते हैं तुम इसका अभ्यास करो, नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति में लग जाओ, ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान जो पाया उस पे क्या करो चलो, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है ध्यान। अब ज्ञान और ध्यान, अब ध्यान मोस्टली क्या लोग किसको बोलते हैं पता, ध्यान उस चीज को कहते हैं अकेले में बैठो आंखें बंद करो क्या कर रहे हो ध्यान कर रहे हो, ध्यान का मतलब जो पाया क्या बोला क्या पाया जो ज्ञान पाया, जो ज्ञान पाया उसका ध्यान रखना, एक बात बताऊं समझना थोड़ी ध्यान, ध्यान लोग मोस्टली ध्यान समझते हैं अकेले में बैठे आंखें बंद कर दी ध्यान कर रहे हैं लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। अब ध्यान का मतलब क्या है जैसे समझाऊं, कृष्ण कहते हैं ज्ञान से श्रेष्ठ क्या ध्यान करना है, ध्यान करना है क्या, हम ने किसी को कहा ये मेरा मोबाइल है इसका ध्यान करना, इसका ध्यान करना मतलब मैं कोई तो बताऊं, टेक केयर, ध्यान इसका करना मतलब इसका संभालना, आपको भक्ति को संभालना है उसका ध्यान रखना है कि कहीं मेरी भक्ति डिस्टर्ब ना हो जाए, आपको भजन का ध्यान करना है कि कहीं मेरा भजन डिस्टर्ब ना हो जाए, ये ध्यान करता है। तो जो पाया है ज्ञान उसका क्या करना है, क्योंकि अगर ज्ञान का ध्यान नहीं हुआ तो ज्ञान चला गया। देखो ये बड़ी टेक्निकली बातें हैं, ज्ञान का क्या करना है, इसलिए ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान का अगर ध्यान नहीं हुआ तो चला गया। आप पैसों का ध्यान करते हो, दुकान का ध्यान करते हो, बच्चों का ध्यान करते हो तो वो संभले रहते हैं, ऐसे आपको ज्ञान का भी क्या करना है तो संभला रहेगा। समझ आ रही बात, इसलिए ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। पैसा तो है आपके पास लेकिन उसका ध्यान नहीं किया तो चला गया। कार तो है लेकिन ध्यान से नहीं चलाई तो, सीढ़ियां तो है लेकिन ध्यान से नहीं उतरे तो, भोजन तो है लेकिन ध्यान से नहीं पकाया तो बिगड़ गया। मानते हो, कपड़े प्रेस कर रहे लेकिन ध्यान से नहीं किए तो जल गए, पानी भर रहे हो लेकिन ध्यान से नहीं भर रहे हो तो बह गया। मानते हो, ये छोटे छोटे उदाहरण से गीता समझा रहा हूं। ऐसे ज्ञान तो है लेकिन ध्यान नहीं है तो ज्ञान चला गया। इसलिए मैं कहता हूं जो भी करो, इसलिए कहा ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म फलों का परित्याग श्रेष्ठ है। कैसे, अब समझो, समझो किसी चीज का हमने बहुत ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद भी उसका रिजल्ट वो नहीं आया जो आना, तो हमको क्या होता, बहुत दुख होता। लेकिन हमने उस कर्म किया ईमानदारी से किया, पूरी मेहनत से किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको स्वीकार करना, चाहे फिर वो हमारे फेवर में आए या अनफेवर, उसे स्वीकार करना है। इसका मतलब है कर्मफल का त्याग में स्वीकार है। अरे ये बहुत टेक्निकल बात समझ में आ गई है। त्याग में क्या है, किस चीज का आपने त्याग किया, मतलब जो रिजल्ट आया उसको आपने स्वीकार किया, तब मन को क्या होगी, शांति होगी, तब मन को शांति। एक बात आप लोगों को समझाऊं, अच्छा वैसे मैं एक ही बात समझा रहा हूं पिछले कई सालों से, उस एक में से अनेक निकलती है लेकिन एक ही है, उसका नाम है कृष्ण। फिल्म कितने घंटे की होती है, है? 3 घंटे की कहां होती है, 2.5 घंटे की होती है। 3 घंटे की कोई कोई लंबी लंबी बनती है, मैं सिर्फ 2.5 घंटे 2 घंटे 45 मिनट। उस फिल्म में कई सीन होते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते हैं, मानते हो ना, कई सीन होते हैं जो हमको अच्छे फिर भी हमको देखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो पूरी फिल्म समझ में नहीं आएगी। ऐसी मेरी माताओं बहनों मित्रों, हमारी जिंदगी में भी कई सीन ऐसे आते हैं जो हमको अच्छे फिर भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बिना जिंदगी नहीं समझ में आएगी। कई सीन है जो हमको नहीं अच्छे लगते लेकिन फिर भी सिनेमा छोड़ के जाते तो नहीं, ऐसी जिंदगी छोड़ के जाना नहीं है, भले कुछ सीन अच्छे ना भी लगे। जरूरी थोड़ी कि सारी फिल्म के सारे सीन अच्छे लगे, लेकिन फिर भी तो हम देखते हैं ना। ऐसे ही जिंदगी के सारे ही सीन जरूरी नहीं कि आपको अच्छे लगे, कुछ सीन आपको हंसाएंगे, कुछ सीन आपको रुलाएंगे, कुछ सीन आपको डराएंगे, कुछ सीन आपको चिंतित करेंगे। ढाई घंटे की फिल्म में उसके बाद सिनेमा से, ऐसे ही जिंदगी की फिल्म है, कभी कोई हंसाता है सीन, कभी कोई रुलाता है, कभी हम ऐसे उछलते हैं और कभी ऐसे करके बैठ जाते हैं और कभी कभी तो गोली खा के सो जाते हैं, कभी गले में दुपट्टा बांध के घूमते हैं और कभी सर पे दुपट्टा बांध के सो जाते हैं। फिल्म देखो, इसीलिए कृष्ण ने कहा साक्षी भाव। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? साक्षी भाव। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? दृष्टा भाव। क्या? दृष्टा। जैसे फिल्म चल रही है और हम देख रहे हैं, फिल्म चल रही है और हम देख रहे हैं, फिल्म चल रही है और हम देख रहे हैं, और हमको पता है ढाई घंटे के बाद हम सिनेमा से अपने घर चले जाएं। ऐसे जिंदगी की फिल्म को देखो साक्षी भाव से, कभी मिल रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी कोई आया, कभी कोई गया, इसको साक्षी भाव से देखो फिल्म को। पता है ढाई घंटे के बाद सिनेमा से घर जाना है, ऐसे पता है जब जिंदगी पूरी हुई तो अपने घर जाना। इसीलिए मैं कहता हूं, दुख हो सुख हो, हंसना हो रोना हो गाना हो, कृष्ण से जुड़े रहो, कृष्ण से। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत समझने की बात है। आप कृष्ण से जुड़े रहो। किससे जुड़े रहो? किससे जुड़े रहो? कृष्ण से जुड़े रहो, उससे अलग बात हो। जैसे गर्भ में बच्चा मां से जुड़ा होता है तो वो जी लेता है और 9 महीने के बाद गर्भ से मुक्त हो जाता है। ऐसे कृष्ण से जुड़े रहो। जिंदगी की फिल्म चल रही है, मैंने फिर कहा जब हम सिनेमा में जाते हैं तो कुछ सीन हमको अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी हम फिल्म तो पूरी देखते हैं ना, और फिर उठ के अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही इस संसार से हमें अपने घर जाना है। जिंदगी की फिल्म है, बस जिंदगी का फंडा है, ना चिंता हो ना भय हो, श्यामा श्याम की जय हो, चलते जाओ। तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी का हर रूप आपको आपके अनुकूल हो, कहां द्रौपदी महारानी और कहां उसको क्या बनना पड़ा, दासी बनना पड़ा। कहां द्रौपदी के सेवा करने वाले हजारों सेवक दास दासियां और कहां द्रौपदी खुद दासी बनी हुई। जिंदगी के सीन है, चलते हैं। कहां पर अर्जुन जैसा महारथी योद्धा और कहां क्या बना है, ढोलक सिखाने वाला किन्नर बना है, कभी के दिन लंबे जी, कभी की लंबी रात, लेकिन चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कृष्ण से जुड़े रहो, कृष्ण से जुड़े रहो, कृष्ण से जुड़े रहो। तो फिर मैं कह रहा हूं, जिंदगी की फिल्म के कुछ सीन आपको पसंद नहीं होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2.5 घंटे की फिल्म में हर सीन आपको पसंद आए, कुछ आपको अच्छे नहीं भी लगेंगे, लेकिन फिल्म का हिस्सा है, देखना है, नहीं तो पूरी फिल्म समझ में, ऐसे पूरी जिंदगी समझने के लिए ये सीन तो देखनी पड़ती। तो परित्याग के, हे गोविंद मैंने ये अब काम अपना कर दिया, अब इसका क्या रिजल्ट आता है आपके हाथ में, और उसको मुझे स्वीकार जी कर। जैसे एक उदाहरण, बच्चे को हमने अच्छी तरह से पढ़ाया, उस पर पूरी मेहनत की, उसका पूरा ध्यान दिया, उसको पूरे संस्कार दिए, उसके बाद भी वो बिगड़ जाता है, वो हमारे हाथ में फिर नहीं, फिर हम खुद को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने उसको पूरा ध्यान दिया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, ये किया वो किया, उसके बाद भी अगर उसके प्रारब्ध है तो उसको खींच के फिर उसको जी लेके जाएंगे। आप अपने बच्चे को संस्कार दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके प्रारब्ध नहीं बदल सकते हैं। अगर उसके प्रारब्ध में नुकसान होना है तो होके रहेगा, अगर उसके प्रारब्ध में कुछ घटना है तो घटेगा, वहां आपकी शिक्षा कोई काम नहीं आएगी, वहां आपके संस्कार भी कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए कभी कभी माँ बाप खुद को दोष देते हैं कि शायद हमारी शिक्षा में ही कोई कमी नहीं है, ये उसके प्रारब्ध है। इसलिए अपने आप को दोष मत दो, आप देखेंगे कई बार आप अपने बच्चों को समझाते हो, एक उदाहरण देता हूं, ये बीतती है लोगों पे, आप उसको कहते हो ये रिश्ता अच्छा है बेटा यहां कर ले, बहुत अच्छी लड़की है कर ले, ये रिश्ता अच्छा है, ये लड़का बहुत ही अच्छा है यहां कर लो, वो नहीं मानते और किसी ऐसी जगह भटक जाते हैं जहां उनका पूरा जीवन दुखमय हो, क्यों कि उसके प्रारब्ध उसको खींचकर वहां लेके गए। उसमें माँ बाप क्या कर सकते हैं, माँ बाप मात्र एक नियमित है, उसके प्रारब्ध उसको भोगते हैं, फिर उससे जो दुख होगा या उससे सुख होगा ये भी उसके अपने प्रारब्ध है। अब उस चीज को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल काम होता और यही कर्म फल का त्याग है कि आपने अपनी कोशिश की और ईमानदारी से की, उसके बाद जो आता है उसे आपको स्वीकार करना, और यही बहुत बड़ी तपस्या। जी कोई और प्रश्न? नहीं, भगवान से हम नहीं जुड़ पाते हैं उसको कभी कैसे स्वीकार करेंगे भाई, ये तो एक बीमारी है। अब मान लो किसी को बुखार आया, क्या आया, और बोला सही है स्वीकार कर लो, ये तो पागल बन, आपको उसका इलाज कराना। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से दूर रहना ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसका हमें क्या कराना चाहिए? और वो इलाज सत्संग है। फिर अपना भी तो प्रयास नहीं करते हैं, हम सब छोड़ देते हैं। गुरु बाबो विठोआ सब सुठो कंदो, वो विठोआ विठो ही रहें दो, नहीं तो सुमी पंदो। आपने क्या किया? सब अगर गुरु पे ही छोड़ दोगे, गुरु भली कंदो, तू छा कंदो। भाई गुरु तो भली कंदो, तू छा कंदो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। हम बहुत बरस पहले वृंदावन में थे, एक बच्ची हमारे साथ थी। दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड थी, तो चप्पल उसने नहीं पहने। तो एक साधु निकले, बोला लाली चप्पल पहन लो, ठंड लगेगी बीमार पर। बोला कृष्ण है ना। साधु को गुस्सा आ गया, बोला बेटा जो काम आप 50 रुपए की चप्पल से कर सकते वो भी कृष्ण से लोगे? जो काम आप 50 रुपए की चप्पल से कर ले सकते वो काम कृष्ण से लोगे? मैं जरे चप्पल पहनू, ये काम कृष्ण से कैसे लो? मुझे एक याद आई, आदि गुरु शंकराचार्य की एक बात याद आ गई, बड़ी समझने की बात। तो आदि गुरु शंकराचार्य एक दिन नाव में थे, नाव में बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी, लोग धक्का धुक्की एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे थे, जैसे सुबह में हमारी लोकल ट्रेन में होती भीड़, ऐसे धक्के मार रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप तो इतने पहुंचे हुए हैं कि चाहो तो पानी पे आप चल के जा सकते हो या उड़ के जा सकते हो, फिर इसने धक्के खाने के लिए इस कश्ती में क्यों बैठे? तब आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि देखो भाई, जो काम मैं 1 पैसे से कर सकता हूं, जो काम मैं, उसके लिए मैं इतनी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का क्यों उपयोग करूं? जो काम मैं 1 पैसे से ले सकता हूं, उसके लिए मैं भगवान की शक्ति का क्यों उपयोग करूं? ऐसे ही जो काम हम कोट पहन के, दवाई लेके, चप्पल पहन के कर सकते हैं, वो काम भी हम किससे लेते हैं? कई लोग ऐसे बोलते हैं, हम कभी दवाई नहीं लेते, कृष्ण बैठा है, तो ये काम भी कृष्ण से कि तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कृष्ण बैठा है। अरे जाओ वही राकेश पटेल के पास, नहीं तो राघाणी के पास ही चले जाओ, सामने ही है, इसके लिए भी कृष्ण बैठा है। तो जो काम आप कर सकते हो, हाँ करने वाला तो कृष्ण ही है, करने वाला तो, लेकिन आप तो कुछ करो, इसके लिए भी कृष्ण बैठा है। जिन सेविया तिन पाया मान, तो बात कहां से आई? असा जो गुरु बैठो, तू छा कर ली मासूमी पंत। नौ, आपको अपने कर्म करने, आपको अपना प्रयास करना है, और उसके बाद जो आए वो कृष्ण की मर्जी, फिर उसमें आपका दोष क्यों? भाई हमने तो अपनी तरफ से पूरी फुल ट्राई की, आगे हरी इच्छा, और जो हरी इच्छा है उसे हमें स्वीकार कर लेना। तो ये जो कि भाई मन नहीं लगता है तो हम क्या उसे स्वीकार कर ले? नहीं, बीमारी है तो उसको इलाज तो कराना। देखिए ऊपर से दिखावा की बात ही नहीं, ये तो बात प्रेम की है। विश्वास की है। और एक बात बताऊं, अगर कोई 20 वर्ष टिक गया है, मैं नहीं समझता फिर वो दिखावा कर सकता, क्योंकि 20 वर्ष दिखावा नहीं चलेगा। कोई 10 वर्ष भी टिक गया तो 10 वर्ष भी दिखावा, कहीं ना कहीं चिंगारी है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। क्योंकि दिखावा वहां करे जहां पर उसको कुछ मिलने वाला हो। सत्संग में तो आपको रेवड़ी भी नहीं मिलती, यहां दिखावा करके करोगे क्या? यहां तो आपको एक चुटकी क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है, वो भी कभी नहीं बांटता हूं, मैं चला जाता हूं, शायद आज भी ना बांटूं, चला जाऊं, लेट हो गया। अच्छा, फिर अपने सत्संग में दिखावे की जरूरत ही नहीं, या दिखावा है ही किस बात का, किसको दिखाओगे? मुझे मुझे क्या दिखाओगे, मैं तो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूं, तो किसको दिखाओगे? जहां तक वृंदावन चंद्र का संबंध है, वो तो अंदर बैठे हैं और वो हमसे ज्यादा होशियार है, हमसे ज्यादा तेज है, हमसे ज्यादा, अब मैं क्या क्या बोलूं उनके लिए, किसको दिखावा करेंगे? फिर यह मिलता क्या है? गोर्डन जसूर न, छोकरे की शादी न, छोकरे की नौकरी न, लड़की की ब्याह न, हफ्ते में कोई अनाज की पोटली न, जैसे दूसरी जगह मिलता है, कोई आपको कार्ड बना के दिया है जिसमें क्या मिलता है, अनाज, वो भी नहीं, तो क्या मिलता है जो इतने दूर दूर से आप लोग आते हो? ये दिखावा नहीं है, ये समर्पण है, ये प्रेम है। और एक बात बताऊं, ये प्रेम बड़ी अजीब चीज है, जिसको होता है उसको पता भी नहीं चलता कि मुझको है, क्या है प्यार है, उसको पता ही नहीं चलता, वो तो बस जिए जा रहा है, लेकिन उसके बिना फिर उसको चलता भी नहीं है, लेकिन उसको पता ही नहीं लगता है कि मुझे प्यार है या नहीं। अभी ऐसे व्हाट्सएप पे कई लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं बाबू जब तक हम सुनते नहीं हमको नींद नहीं आती है। एक आदमी मुझे मिला, बोला पहले मैं नींद की गोली लेके सोता था, अब मैं सत्संग सुन के सोता हूं, मुझे अच्छी नींद आ जाती है। एक हस्बैंड वाइफ मिले, बोला पहले हम लोग सोने से पहले कुछ किच 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 हो जाती थी, अब क्या करते हैं आपका सत्संग चलाते, एक ईयरफोन वो कान में डालता है, एक मैं डालती हूं, बस सुनते रहते हैं, ना उसकी किच ना मेरी किच, आराम से सो जाते। तो क्या मिलता है जो आदमी सुनेगा? इसी को कहते निस्वार्थ भक्ति, प्रेम, भजन, सत्संग, कीर्तन। ऐसे बहुत अद्भुत अद्भुत लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने कभी मुझे देखा भी नहीं, अब क्या क्या बातें बताऊं, बहुत लंबी लंबी बातें हैं। इसे कहते हैं प्रेम, जो आदमी को खुद भी पता ही नहीं चलता है और हो गया होता है। ऐसे आप सबों को कृष्ण राधा वृंदावन चंद्र से प्रेम है, ये जितने बैठे आप सबों को प्रेम है, नहीं तो 20 बरस टिके रहना बच्चों का खेल है क्या? उस 20 वर्ष में हमारे जीवन में कितनी ऊंच नीच आई होगी बोलो ना, और उस ऊंच नीच में भागने के कितने मौके होंगे? 20 पिंजरे में अगर कोई तोता बैठा रहा है तो उसको तो बेचारे को बैठना ही है, लेकिन जब पिंजरे का दरवाजा खुल जाए और फिर भी वो, मतलब पिंजरा उसको भाग गया है। ऐसे आप लोगों को किसने रोका है बोलो ना, किसने रोका? किसने रोका है? जाओ भाग जाओ, लेकिन नहीं, हमारी जिंदगी में भागने के कई मौके आए होंगे, जब हमारा विश्वास पकड़ के बैठ गया होगा, नहीं तो मन तो कई बार हमारा है विचलित हुआ होगा, कई बार हमारा मन विचलित हुआ होगा, लेकिन फिर भी किसी ने पकड़ के हमें बैठा है। वो ही हमारा प्रेम है जो हमको भी नहीं पता है, जो हमको भी नहीं पता। और कृष्ण करे ये प्रेम सदैव बना रहे, सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। नित्य भजो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।